आज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 21 श्लोक संख्या 27 और 28। 28वां श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइएगा। तम बद्धम वरुण पाश भगवान वामन नष्ट श्रियं स्थिर प्रज्ञं उदार यशसं नृप तं बद्धं वारुणः पाशः भगवान् आह वामनः नष्ट श्रियं स्थिर प्रज्ञं उदार यशसं नृप तं बद्धं वारुणः पाशः भगवान् आह वामनः नष्ट श्रियं स्थिर प्रज्ञं उदार यशसं नृप तम उसको बद्धम बांधे गए वारुणः पाशः वरुण पाश द्वारा भगवान भगवान आह कहा वामनः वामन देव ने नष्ट श्रियम शारीरिक कांति से विहीन बलि महाराज से सिर प्रज्ञम किंतु फिर भी अपने निर्णय पर अटल उदार यशसम अत्यंत सुंदर एवं विख्यात नृप हे राजा। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, मेरे पीछे दोहराइए। हे राजा, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं विख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पाश से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तात्पर्य पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री प्रभुपाद की, जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाती है तो निश्चय ही उसकी शारीरिक कांति घट जाती है, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने पर भी भगवान वामन देव को तुष्ट करने के अपने संकल्प पर अटल थे। भगवद गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अनन्य भक्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने ही कष्ट या व्यवधान क्यों ना आए। सामान्यतः जिनके पास संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हैं वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए। वे भगवान की विशेष कृपा है अपने भक्तों पर। भगवान कहते हैं, यस्या अहम अनुग्रहनामी हरिष्ये तधर्म शनाय। जब भगवान अपने भक्त पर विशेष कृपा करते हैं तो सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता। वह सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे आशातीत पुरस्कार प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। 27वें श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए तो ब्रह्मांड के अधो तथा ऊर्ध्व लोकों की समस्त दिशाओं से विलाप का आर्तनाद हो। 28वां श्लोक है। हे राजा, जब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं विख्यात बलि महाराज से बोले, उन्होंने वरुण जिसे उन्होंने वरुण पाश से बंदी बनवा लिया था, यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी तो भी वे अपने निर्णय पर अटक। उदार एवं विख्यात बलि महाराज, उदार यशसम, विख्यात का मतलब है उनका यश जो है वो फैला हुआ है चारों तरफ, कि बलि महाराज से ज़्यादा उदार और कोई। अब भगवान वामदेव किस लिए आए हैं, व्हाट इज हिज पर्पस ऑफ कमिंग हियर, क्यों आए, क्या कारण था कि उन्होंने एक छोटा सा रूप धारण किया और रूप धारण करके उन्होंने बलि महाराज से याचना करी, याचक बन के आए, भगवान याचक बन के आए। तो बलि महाराज की उदारता की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो इतने उदार हैं कि उन्हें पता है शुक्राचार्य जी ने मना किया है कि इनको मत करना, विष्णु है तेरा सब कुछ हर लेंगे, परंतु फिर भी उसने कहा कि अगर विष्णु मेरे द्वार पर याचक बन के आते हैं तो मैं अपनी उदारता में कमी नहीं करूँ, आई हैव टू गिव। अब यहाँ बात आ रही है कि सब कुछ छिन रहा है, अभी दो पग रखे हैं, तीसरा पग नहीं रखा, दो पग में भगवान ने सब कुछ छीन लिया है उससे। तीसरे पग की बात तो अभी आगे होगी, 29वां श्लोक पढ़ेंगे उसके बाद से उसके उससे जो है चर्चा स्टार्ट होती है तीसरे पग की, कि तीसरा पग कहाँ रखा जाए। यहाँ तो दो पग के अंदर ही भगवान ने सब कुछ हर लिया। अब यहाँ पर जो है लिखा जा रहा है कि सब कुछ हरने के बाद शरीर की सारी कांति जा चुकी है, आज भी इस संसार के अंदर अगर हमारा धन छिन जाता है, लोगों को शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टी में लॉस हो जाता है, कुछ चोरी हो जाती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, तो कांति हरी जाती है कि नहीं हरी जाती, चेहरे पे पीलापन आ जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, देखने वाला कहता है क्या हो गया, अभी शक्ल से ही पता लग रहा है कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपन्ड, होता नहीं होता प्रभु जी। कोई सुख की खबर मिलती है, कोई अच्छी खबर मिलती है तो चेहरा खिल उठता है, अरे बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आज, क्या बात है आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, चेहरे से ही खुशी झलकती है। और जब कोई दुख की खबर आती है, शोक की खबर आती है, कष्ट की खबर आती है, परेशानी की खबर आती है तो चेहरा उतर जाता है, तो व्यक्ति देखते ही बोलता है आज बड़े दुखी से लग रहे हो भाई, क्या बात है, चेहरा बड़ा मुरझाया सा हुआ है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो गई हो। तो मतलब शरीर की कांति जो है वो कांति रिफ्लेक्ट होती है, हाथों से तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, पैर से तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, पेट से तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, चमक क्या कहते हैं, आज बड़े चमक रहे हो तो हाथ थोड़ा चमक रहा है, चमक क्या रहा है, चेहरा चमक रहा है ना, चमक तो चेहरे में है ना। तो अंगों की कांति समाप्त होने करती है कि बलि महाराज का चेहरा जो है वो थोड़ा डाउन है, परंतु रिफ्यूजल नहीं किया कि सब कुछ छीन लिया मैं थोड़ी देता, कर लो क्या करोगे भाई, आप कैन पावरफुल हो, मेरे पास सब शक्ति विराजमान है, एवरी पावर इज विद मी, पर मैं आपको मना करता हूं, मैं नहीं देता, भाग जाओ, ऐसा नहीं कहा। आदर मान सम्मान, पूरे आदर मान सम्मान के साथ रखा है सामने याचक, याचक कौन है, स्वयं भगवान। अब देखिए एक दूसरी बात बताते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलते हैं। याचना भगवान किसके लिए कर रहे हैं, कहूं किसके लिए हो रही है, अपने लिए कर रहे हैं क्या, कि मुझे मिल जाए, मुझे कुछ प्राप्ति चाहिए, आई वॉन्ट दिस थिंग फॉर माई सेल्फ। किसके लिए याचना हो रही है? हो रही है देवताओं के लिए। मतलब भगवान थर्ड पार्टी के लिए याचना कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है ना, वो दो पार्टियां तो यहां है, एक वली महाराज और एक भगवान। अब याचना किसके लिए हो रही है? थर्ड पार्टी के लिए हो रही है। उसको आप आज के सिनेरियो में देखो, आज के सिनेरियो में कई बार याचना को हम समझते हैं कि मांगा जा रहा है। लोग कहते हैं कि भगवान तो सर्व संपन्न है, समस्त संसार के स्वामी हैं, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, वही हमको देने वाले हैं। कौन देने वाला है आपको? जो सुख भोग आपको उपलब्ध हैं वो किसने दिए हैं? Who's given you? भगवान ने दिए कि नहीं दिए? तो लोग कहते हैं कि जब भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ हमें उपलब्ध है भगवान के द्वारा, तो हम जो है भगवान को वापस क्यों करें, भोग क्यों लगाएं, उनके लिए फल क्यों लेके जाएं, उनके लिए केले क्यों लेके जाएं, उनके लिए सेब संतरा क्यों लेके जाएं? Why he doesn't need it? उनको नहीं चाहिए, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वही तो देने वाले हैं, तो उनको वापस क्यों दिया जाए? किस लिए? भगवान के पास सब कुछ है, आप उनके लिए लक्ष्मी मांगने आए, धन मांगने आए हो, वो तो स्वामी है, आप क्यों मांग रहे हो उनसे? क्या उत्तर है, क्या आंसर है? भगवान को दिया जाए कि न दिया जाए, क्यों दिया जाए? आपने कहा दिया जाए, कितने लोग चाहते हैं भगवान को दिया जाए, तो क्यों दिया जाए? शुद्धिकरण का मतलब यह है कि आपने बेईमानी का पैसा कमाया और भगवान को अर्पित कर रहे, शुद्धिकरण हो रहा है, बेईमानी का कार्य किया। हाँ जी बोलिए, तो उनको देने की जरूरत क्या है? जब सब कुछ उन्हीं का है तो उनको देने की आवश्यकता क्या है? वो लेते हैं फिर आपको दे देते हैं, फिर लेते हैं फिर आपको दे देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं कि पिता ही बच्चों को धन देता है, पालन पोषण करता है, और बच्चा जो है फिर पिता के पैसे से ही कोई गिफ्ट खरीदता है, एक पेन लेता है और पिता को गिफ्ट कर देता है, तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है। कितने लोग सहमत हैं? ताली बजाओ फिर। इन्होंने कहा कि भगवान के साथ जब आदान प्रदान करते हैं तो एक लविंग रिलेशनशिप बनता है। इनके लिए भी ताली बजाओ। देखिए बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज ये है कि लव कैन नॉट बी यूनिलैटरल। एक तरफा प्यार होता क्या? लड़का लड़की से कहता रहे कि मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, लड़की कहती मैं तो नहीं करती बात। तो प्यार तभी है जब वो लड़की की तरफ से भी रेसिप्रोकेट हो, इधर से प्यार का संदेश जा रहा है, उधर से प्यार का संदेश आ रहा है। भगवान कृष्ण विरह में है, मथुरा जा चुके हैं, वृंदावन को छोड़ चुके हैं। उन्होंने नंद महाराज के लिए, यशोदा मैया के लिए, गोपियों के लिए, गोपों के लिए एक प्रेम का संदेश भेजा है। किसके द्वारा भेजा? उद्धव जी के द्वारा, एक प्रेम का संदेश लेके गए। एक तरफा हो गया, गोपियां कहें कि हमारे को तो प्रेम का संदेश आया है, हम तो प्रेम करती नहीं, हम तो प्रेम नहीं करती, तो संदेश को साइड में रख सकते हैं। नहीं, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, उन्होंने रेसिप्रोकेट करके संदेश भेजा वापस। किसके द्वारा भेजा? हंस के द्वारा। वो संदेश जो आ रहा है वो रेसिप्रोकेटेड है, मतलब इट इज अ बाइलेटरल अफेयर, यूनिलेटरल नहीं है, इट इज अ बाइलेटरल अफेयर। तो इसी तरीके से हम जब भगवान के साथ प्रेम का संबंध करना चाहते हैं, एक प्रेम का रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, तो इट हैज़ टू बी बाइलेटरल, इट कैन नॉट बी यूनिलेटरल कि भगवान हमें देते रहे, हम उसको लेते रहे। हमें उसको रेसिप्रोकेट करना है कि हम भी भगवान को आउट ऑफ लव कुछ ऑफर करें। वी हैव टू ऑफर। हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान को सजाते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, वो एक रेसिप्रोकेशन ऑफ लव है कि हम उस प्रेम का आदान प्रदान भगवान हमें दे रहे हैं, उन्होंने हमें सब वस्तुएं दी हैं, परंतु यूनिलेटरल हो जाएगा। हमें कैसा चाहिए? एक बाइलेटरल फिर चाहिए, दो तरफा चाहिए। तो यहां सवाल आ रहा है कि बलि महाराज कहते हैं कि भगवान मेरे द्वार पे आ गए तो मैं उनका आदर मान सम्मान कैसे करूं? आज इंसिडेंटली याचक बन के आए, तो याचना के अंदर भी भगवान का प्रेम है, वो प्रेम प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व जो है भगवान को अर्पित कर दिया है, परंतु उसको करने के बाद अपने निर्णय के ऊपर वो अटल है। व्यक्ति सोचता है, यार मैंने तो इनको ब्लैंक चेक दिया था, इन्होंने सारा पैसा लिख लिया मेरा, चेक फाड़ देता, मैं नहीं देता, चेक फाड़ देता। होता है ना कई बार, ब्लैंक चेक दे देते हैं, लो जो लिखना लिख लो। उसने लिख लिया 500 करोड़, तो सारा ही पैसा चला गया भैया, ये तो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। चेक लिया, अच्छा मैं साइन कर दूँ, और साइन करने से पहले इसको टियर ऑफ। बलि महाराज ने क्या कोई ऐसा कांड किया, कोई ऐसा कार्य किया? वो अपने निर्णय के ऊपर स्थिर थे। स्थिर व्यक्ति कब होता है? स्थिरता कब आती है? आप अपने डिसीजन के ऊपर फिक्स्ड है, डिटरमिंड है, आपके अंदर जो है जो क्षमता दी है भगवान ने उसको आपने प्रॉपरली यूज किया है। क्षमता क्या है? आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकमयी बुद्धि। विवेक अर्थ क्या है? सत्य को असत्य को, सार को असार को, कर्तव्य को अकर्तव्य को, करणीय को अकरणीय को भेद कर पाना। What is right and what is wrong? क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका आप फैसला कर पाए, वो है विवेकमयी बुद्धि, अर्थात आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यह इंटेलिजेंस का रोल है, इंटेलिजेंस का। अगर आपके पास वो बुद्धि है और आप सत्य के मार्ग में चलते हैं, यू आर एबल टू डिसाइड कि दिस इज द करेक्ट पाथ, आई हैव टू मूव ऑन दिस, तब आप स्थित प्रज्ञ कहलाते। प्रज्ञ मीन्स बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। और अब आपके अंदर जो है स्थिरता आती है कि अब आप विचलित नहीं होते, यहाँ प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने पर भी भगवान वामन देव को तुष्ट करने के लिए अपने संकल्प पर अटल थे। अटल का मतलब है टलना नहीं, डेविएट नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। यहां भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर, यह सर्वत्र निधि स्नेह तत्त्य प्राप्त शुभ शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठता। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दी गई, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है ना शुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता। स्थिरता आती है जब सिचुएशंस आपको फेवरेबल होती हैं, स्थितियां परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति हो रही है, बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहे हैं, सुख सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध है, तब आप जो है हर्षित नहीं होते, उछल कूद नहीं करते, अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। और साइमल्टेनियसली अगर स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, आपके अगेंस्ट होती हैं, आपको सूट नहीं करती हैं, आपको उससे जो है शोक या दुख की प्राप्ति होती है, तो उन परिस्थितियों के अंदर भी आप उनसे घृणा नहीं करते, उनसे विचलित नहीं होते कि हाय ये क्या हो गया। मैं तो जी रोज मंदिर जाता था, माथा टेकने के बाद ही मैं आगे अपने काम पे जाता था, क्या दिया भगवान ने मुझे, सब कुछ छिन गया, क्या फायदा हुआ मंदिर जाने का, कोई लाभ हुआ, आज से जाना बंद, नहीं जाएंगे, आई विल नॉट गो, विचलित हो गया। अभी सिद्ध प्रज्ञता तो आई नहीं थी, अभी तो बिगनिंग स्टेज थी कि तूने फैसला किया कि मुझे मंदिर जाना चाहिए और दर्शन करने चाहिए, और जरा सी स्थिति आई, परिस्थिति खराब हुई और तू विचलित हो गया, मेरा जाना बंद, मैं नहीं जाता मंदिर। यहां जो है भगवान कह रहे हैं कि सिचुएशंस कितनी भी खराब हो जाए, कितनी भी अच्छी हो जाए, आप एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में हो, अर्थात आप आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ते नहीं, सत्य क्या है असत्य क्या है, करनी क्या करनी क्या है, कर्तव्य क्या कर्तव्य क्या है, सार क्या है सार क्या है, उसमें भेद करना छोड़ते नहीं हो, भेद कर पाते हो, और भेद करने के बाद आप राइट पाथ पे चलते हो, सीधे मार्ग पे चलते हो, डेविएट नहीं होते। और यही जो है बलि महाराज की क्वालिटी बताई गई। अब यहां पर है कि बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए, यश मिला, यश मिला कि उन्होंने भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया है, सरेंडर की स्थिति। जब आपको कोई बंदूक की नोक में रख लेता है तो आप दोनों हाथ खड़े कर देते हो, फिर मर्जी आपकी चलती है कि बंदूक वाले की चलती है, इसकी मर्जी चलती है, बंदूक वाले की चलती है ना। यहां रोज भगवान के आगे हाथ खड़े करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हाथ खड़े करने का अर्थ है भगवान के प्रति सरेंडर, और उसके बाद मर्जी अपनी करते हैं कि भगवान की मर्जी से चलते हैं। मर्जी किसकी रहती है, अभी अपनी है, मन भगवान को नहीं दिया, मन मना वाली बात नहीं आई है, भगवान को मन अभी नहीं दिया, मर्जी अभी मेरी है, सरेंडर। आप यही तो अर्जुन ने कहा दूसरे अध्याय में, यही तो चर्चा आ रही है, कार्पण्य दोषो अपत स्वभाव प्रशामी ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षे स्या निश्चितम रोहित अन्य शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। और मैं आपका शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। और उसके बाद सोच के ध्यान लगा के नवे श्लोक में जाके कहता है, हे गोविंद अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इट्स नॉट एबल टू डिसाइड, स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ, बुद्धि स्थिर नहीं हुई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बात समझ में नहीं आई। अब एक सिंपल सी बात बताइए, आपने भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को सरेंडर कर दिया है, तो अपना कहने पे चलना चाहिए कि भगवान के कहने पे चलना चाहिए? चलना चाहिए ना, अब भगवान तो आपसे कुछ कह नहीं रहे, बोल रहे हैं क्या, आवाजें आ रही हैं, बाल मुकुंद ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो कह रहे हैं क्या? फिर आप बोलोगे जी वो तो कुछ कहते नहीं, तो अपनी मर्जी से चलूंगा, उनकी मर्जी से थोड़ा चलूंगा मैं, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो भगवान के आगे हाथ खड़े करके बैठा था, भगवान ने तो कुछ कहा नहीं, तो मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान कुछ बोले तो मैं कुछ करूं, भगवान तो बोलते नहीं तो मैं कुछ करता नहीं, अपनी मर्जी से चलता हूं, क्योंकि भगवान की मर्जी मुझे पता ही नहीं। बताया क्या भगवान की मर्जी? भगवान ने बताया दिन में शाम को रात में सपने में बोले, फिर कौन बोलेगा भाई, कौन बोलेगा? बोलेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव। मैसेज जो है प्राइम मिनिस्टर का कई बार डायरेक्ट नहीं आता है, उनका पीएमओ से मैसेज आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आता है, नहीं आता, कैबिनेट सेक्रेटरी से मैसेज आ रहा है। अगर हेल्थ के बारे में है तो हेल्थ मिनिस्टर से आता है, वेल्थ के बारे में है तो फाइनेंस मिनिस्टर से आता है। प्राइम मिनिस्टर तो हर बात नहीं बोलता ना, वो तो उनके जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके माध्यम से मैसेज आता है। मैं तो जी गुरुजी के पास गया था, उन्होंने तो मुझसे कुछ कहा नहीं, मैं तो कुछ करता नहीं, बात फिर वहीं आ गई। इतना स्वीकार कर लिया कि जो गुरु हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो भगवान के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इतनी बात समझ में आ गई। पर बोले तो वो भी नहीं, वो नहीं बोले, कौन बोलेगा? जो उनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलेंगे। मींस जो गुरु हैं उनके जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा आपको संदेश मिलेगा। टेंपल प्रेसिडेंट, टेंपल कमांडर, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको सेवा में लगाएंगे, आपको आदेश देंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। बोले मैं आपकी बात क्यों मानूं, भगवान ने तो कही नहीं आप कह रहे हो, भगवान ने तो कही नहीं आप कह रहे हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, कितने लोग कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं, कॉरपोरेट में बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उसमें कितने लोग काम करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको जो आपको इंस्ट्रक्शन है बिल गेट्स दे रहा क्या? इंडिया का चीफ जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो दे रहा क्या? उससे मुलाकात हो सकती है आपकी? आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है एचआर से, ऐसे होता है प्रभु जी, एचआर समथिंग समथिंग उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट पे जो भी होगा भाई इंस्ट्रक्शंस देगा आपको, और यू आर बाउंड टू फॉलो इट, यू आर बाउंड टू फॉलो इट। यहां पर अगर जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम कहते हैं ये तो वो कहते ही रहते हैं, इनके कहने से क्या होता है, इनको कौन मानेगा, ये बेकार है। फिर आप उस इंस्ट्रक्शन को लेके गुरु पे चले जाते हो, महाराज मेरे को ना ऐसा करने को बोला है, मैं करूं कि ना करूं? व्हाई डू यू वांट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गुरु व्हेन हिज रिप्रेजेंटेटिव हैज गिवन हिज ऑथराइज्ड, उन्होंने ऑथोराइज किया है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव है ये काम करेगा, हर काम के लिए इतनी सी बात हुई गुरु जी के पास, इतनी सी बात हुई उनको टेंशन दे रहे हैं अलग से, महाराज मैं नौकरी छोड़ू कि ना छोड़ू, नहीं ज्वाइन करूं कि ना करूं, दिल्ली के बाहर जाऊं कि ना जाऊं। अरे भाई तुम्हारा डिसीजन है, तुमको देखो सेवा कैसे करनी है, घर कैसे चलाना है, इसमें तुम इतनी इतनी बातों, आई सी इट पीपल टॉकिंग टू गुरु महाराज अननेसेसरली महाराज। पर महाराज दिल्ली के अंदर आते हैं और मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में 50% टाइम ऐसी बातों में खराब होता है। इज ऑल टॉक्स कैन बी हेल्प। सीनियर डिवोटी से बात कर लो बता देगा, टेम्पल प्रेसिडेंट से बात कर लो वो बता देगा, टेम्पल अथॉरिटी से बात कर लो वो बता देंगे व्हाट इज राइट फॉर यू व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। नहीं मीन्स हम लोग जो है जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके ऑथोराइज हैं, जो उनके ऑथोराइज हैं उसकी अथॉरिटी को बाईपास करते उनको अथॉरिटी एक्सेप्ट करते नहीं। तो क्या हुआ कि आपने परंपरा को नहीं माना। परंपरा है ना, आपने परंपरा को नहीं माना तो भक्ति कहां से आगे बढ़ेगी, भक्ति कहां से बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अब आती दूसरी बात, यहां एक चर्चा आ रही है कि यह भगवान की विशेष कृपा, दया क्यों नहीं लिखा, ये दया है कि कृपा है। ये दया है या कृपा है? प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरी क्लियर, ये भगवान की विशेष कृपा है अपने भक्तों पर। भगवान कहते हैं यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनं शनः। इसका क्या अर्थ हुआ कि जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूं सर्वप्रथम उसका धन हर लेता हूं, कृपा करता हूं। कैसे समझेंगे इसे? दो शब्द हैं, एक दया है एक कृपा है, दोनों में भेद क्या है? What is the difference? जब आप एक दूसरे से मिलते हो ना, आपकी कृपा कहते हो, पर आपका धन तो हरा नहीं गया। भगवान की कृपा मानते हैं तो भगवान ने धन हर लिया, मैं आपकी कृपा मानता हूं आपने तो मेरा धन नहीं हरा। तो दया में और कृपा में क्या फर्क है? मर्सी है, बड़ी मर्सी है जी आपकी, बड़ी दया है जी आपकी। सो दया में और कृपा में क्या भेद है? व्हाट इज द डिफरेंस? यहां दया शब्द ना इस्तेमाल करके भगवान ने, यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान की विशेष कृपा है, और फिर उसके जो मीनिंग है उसमें भी लिखते हैं जब भगवान अपने भक्त पर विशेष कृपा करते हैं तो सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता, वह सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे आशातीत पुरस्कार प्रदान करते हैं। वो पुरस्कार क्या है, वो आशा क्या है, वो कृपा क्या है? ये तीन शब्द इस द्वितीय दो लाइनों से निकल गया। तो कृपा को समझने के पहले ही समझना पड़ेगा कि दया में और कृपा में क्या भेद है। एक गरीब आदमी आपके पास आया, आपने देखा इसके पास ना कपड़े हैं, ना भोजन है, रहने की जगह नहीं है, बड़ा बुरा हाल है, तो आपको उस पर करुणा आती है कि नहीं आती है? कंपैशन, कुछ करना चाहिए, समथिंग शुड बी डन फॉर हिम। सर्दी का मौसम है तो कंबल देंगे, कुछ करेंगे, मतलब आप उसके लिए कुछ करते हैं। जब कंपैशन के बाद उसकी हेल्प करी जाती है तो दया कहलाती है। अब कंपैशन की स्थिति में है, करुणा आई है आपके मन के अंदर, करुणा जागृत हुई है, इज अ वेरी पुअर फेलो, इज अ वेरी वेरी बैड शेप, इसके लिए कुछ करना चाहिए, और आप उसके लिए कुछ करते हैं, दया करते हैं। माता जी दया करिए ना, थोड़ा दो रोटियां दे दीजिए, कहते ही नहीं कहते, भिखारी है कुछ दया करो ना, गरीब हूं कुछ दे दो मेरे को, दया ही तो करा, दया ही तो कहने को कर रहा है वो आपसे। सो दया का अर्थ क्या हुआ, उसको खाना मिल गया, आपने रहने की जगह भी दे दी, कंबल भी मिल गया, उसको कपड़े भी मिल गए, खाने को रोटी मिल गई, सब सुविधाएं उपलब्ध हो गई। इसका मतलब ये है कि नाउ ही इज वेरी कंफर्टेबल। आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास ठीक से हालात नहीं है, आपके पास धन नहीं है, घर नहीं है, बिंगली बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान की दया हो जाती है, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। हम उसको कृपा कह देते हैं, कृपा नहीं है वो, भगवान की दया है। वो दया पूर्वक आपको जो है सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। मीन्स जो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल थी उनको उन्होंने अनुकूल बता दिया इस भौतिक संसार में रहने के लिए। यू आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको रहने के लिए अगर दया करते हैं आप पे, तो आपको सुख सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। बंगला भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, सारी सुविधाएं मिल गई। किस लिए मिली? इस भौतिक संसार में फंसे रहने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दया का मतलब यह है कि अगर आप पे भगवान की दया हो जाती है तो आप इस भौतिक संसार में फंस जाते हैं, बिकॉज उस दया को आप एंजॉय करते हो। फिर एंजॉय करते हैं, बंगला मिल गया बहुत बड़ा, गाड़ी मिल गई बहुत बड़ी, मंदिर तो आते नहीं, कहां जाते हैं फिर? पैसा भी मिल गया तो कहां जाता आदमी? क्लब में जाता है कि मंदिर में आता है? कहां जाता है? किटी पार्टी में जाता है कि मंदिर में आता है? घूमने फिरने जाता है, विदेश यात्रा में जाता है कि मंदिर में आता है? जब दया उपलब्ध होती है तो व्यक्ति भौतिक संसार में फंसता चला जाता है। वो तो भगवान की दया है। अब भगवान करते हैं कृपा। कृपा का मतलब यह है कि दया से ऊंची चीज है ये, आशातीत पुरस्कार। आशा क्या है? व्हाट इज योर डिजायर? कृपा तब होती है जब आपकी डिजायर है कि हे भगवान अपने चरणों में लगा लो, हे भगवान अपने धाम में ले जाओ, हे भगवान अपनी सेवा में लगा लो। नो, दिस इज योर डिजायर। और उस डिजायर को फुलफिल करना है तो बड़ी सिंपल बात करिए, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दया हो जाएगी, सुख मिल जाएगा तो भगवान को कोई याद नहीं करता। जब दुख मिलेगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, तब भगवान का स्मरण होगा। तो भगवान क्या करते हैं, आप पे कृपा करके प्रतिकूल परिस्थितियां आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, जिससे कि आपको हौले हौले, शनै शनै मीन्स हौले हौले, हौले हौले आपका सारा धन, सारी ऑपुलेंस, सारी लक्ष्मी हर ली जाती। संत तुकाराम की एक छोटी सी बात है, गन्ने लेके आ रहे हैं, भगवान की कृपा देखो कैसे मानते हैं। काम करते हैं किसान के यहाँ, तो उसने जमींदार ने उसको जो है उस दिन गन्ने का ढेर दे दिया पूरा का पूरा, गन्ना लिए ला दे आ रहे, तो रास्ते में बच्चे उनको तंग कर रहे हैं। तो एक गन्ना इसने ले लिया, एक गन्ना उसने ले लिया, एक गन्ना उसने ले लिया, सब ने गन्ने खीन लिए। भगवान कितने कृपालु हैं, मेरा वजन हल्का कर रहे हैं, गड्ढे घर के लिए ले जा रहा है भाई, तो तेरे कम हो गया, तुम घर के लिए लेके आओ, रास्ते में कम हो जाए, कितना गुस्सा खुंदक आएगी कि नहीं आएगी कि लोग आपसे छीनते चले जाए कि गन्ना जो है बच्चा निकाल के चला जाए मारने को दौड़ा, मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ तो क्या मुझे तंग कर रहा, बट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। तो क्या कहते हैं कि भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि मेरा वजन कम कर दिया, वेट कम हो गया, एक गन्ना बचा। अब पत्नी के पास जो है बच्चे खबर लेके आ गए थे अड़ोस पड़ोस के कि आज जो है तुकाराम जी को गन्ने का ढेर मिला है, कंधे पे लाद के ला रहे हैं। तो पत्नी ने कहा चलो भी कुछ गन्ना पीसूंगी, गुड़ बनाऊंगी, कुछ मैं गन्ने से चूसूंगी, चला मेरा हफ्ते 15 दिन का गुजारा चल जाएगा, उसके बाद की बात फिर देखी जाएगी। तो पत्नी बस वेरी हैप्पी, बड़ी खुश थी कि आज तो तुकाराम जी ने कमाल का काम कर दिया कि गन्ने का पूरा ढेर लेके आ रहे, व्हाट नाइस थिंग। घर पहुंचे तो गन्ना था एक सिंगल पीस। पति ने देखा तो क्रोधित हो गई, कहां गए बाकी गन्ने? मुझे खबर मिली है कि तुमको तो ढेर भर गन्ने मिले थे और तुम एक गन्ना घर में ले आ रहे हो। और पति ने गन्ना लिया, तुकाराम की पीठ में मारा और दो हो गए। तुकाराम जी कहते हैं भगवान की कितनी कृपा है, मुझे तोड़ने का भी कष्ट नहीं करना पड़ा, एक तो हरा और एक मेरा, एक तो एक हिस्सा तुम्हारा एक हिस्सा मेरा। भगवान की कृपा मानते हैं कि मेरे को तो तोड़ने का भी कष्ट नहीं करना पड़ा। भगवान कितने कृपालु हैं। ढेर गन्ने में से आधा मिला जाके पत्नी को और आधा मिला खुद, हर लिया गया ना, इसको जो है भगवान की कृपा मानते हैं। अब आप आज की सिनेरियो में आओ, जहां हम बैठे हुए हैं इस सिनेरियो में आओ। आप भगवत गीता पढ़ते हो? कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता? इसके फ्रंट के अंदर आपको जो है प्रभुपाद जी का नाम मिलता है। क्या नाम लिखा हुआ है? कृष्ण कृपा मूर्ति दया मूर्ति नहीं लिखा, दया मूर्ति लिखा है कि कृपा मूर्ति लिखा? क्यों लिखा है कृपा मूर्ति? सब तो हर लिया प्रभुपाद ने, कुछ बचा? हारी ऑपुलेंस गई, सारा घर गया, केमिस्ट शॉप गई, सब बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ। और तो और जो मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे थे, जो हाथ से पांडुलिपि बना रहे थे, वो भी पत्नी ने बेच दी चाय के लिए। अकिंचन होके निकले हैं घर से, विचलित हुए क्या, डिस्टर्ब हुए? पर आशातीत पुरस्कार मिला, ऐसा पुरस्कार किसी को नहीं मिला। आशा क्या थी? कि मैं चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को, उनके ज्ञान को, उनके संदेश को विश्व भर में प्रचारित करूं और भगवान राधा कृष्ण के मंदिरों की स्थापना करूं। ये पुरस्कार भगवान ने दिया कि नहीं दिया? कोई मैच है? विचलित नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अकिंचन होने के बाद भी विचलित नहीं, अपने मिशन पे जमे रहे। आप जब प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हो, खास तौर पे लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन जो पहला पार्ट है उसका, दिस ब्रिंग्स टीयर्स टू योर आईज, आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये कितने कष्ट आए, कितनी परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, परंतु अपने मिशन के प्रति वो विचलित नहीं हुए, जमे रहे उसके। तो यहां जो है भगवान की विशेष कृपा जब होती है तो उसका सारा धन हर लेते हैं। प्रभुपाद जी में भी विशेष कृपा हुई और प्रभुपाद जी उसी पर्वत में लिखते हैं भगवान उसे आशातीत पुरस्कार प्रदान करते हैं। आशातीत का मतलब है कि जो उनकी आशा थी उससे भी ज्यादा। आशा क्या थी? भगवान नाम का प्रचार। आशा थी चैतन्य महाप्रभु के नाम का विस्तार इन एवरी टाउन एंड विलेज। आप कभी सोच नहीं सकते, मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं कि चार लोग हैं, चार लोग ओनली, रशियन कंट्री है कोई, नाम मुझे नहीं याद है, मार्केट है ऐसी, हमारे दिल्ली की मार्केट की तरह नहीं है भीड़ भाड़ वाली, वो मॉल टाइप मार्केट है, खसा बिल्कुल, कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है। आपको चार लोग वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, उनका एक ऑडियन है गंगले के अंदर, एक के पास मृदंग है, एक दो के पास करताल है, एक लेडी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किताबें हाथ में ली हुई है, यूरोपियंस हैं, और इक्का दुक्का लोग जो है चलते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि हमारे साथ भीड़ नहीं है, हम अकेले जा रहे हैं। हम क्या कहते हैं, ऐसा है गली में निकालेंगे तो लोग तो आते नहीं, इसलिए हम निकालते नहीं। लोग तो कोठियों में बैठे रहते हैं, हम तो निकालते नहीं। अरे भाई, लोगों के लिए निकाल ले हो कि भगवान के लिए निकाल ले, किसके लिए निकाल ले? आप कीर्तन कर रहे हो लोगों के लिए कर रहे हो कि भगवान के लिए कर रहे हो? तो भगवान तो सब जगह उपस्थित हैं, फिर आप क्यों टेंशन में हो? हम लोग ये बात नहीं समझते, पर वो अंग्रेज समझ गए, उनको बात समझ में आ गई है। और मैंने देखा है वीडियोस के अंदर, वो चार लोग पांच लोग जो है मिलके अपना कीर्तन कर रहे हैं, पांच ही कीर्तन करने वाले हैं और दो लोग सड़क पे हैं, बस कोई नहीं, पर दया मूवी मस्ती में है अपने, वो मस्ती में चल रहे। तो संसार के अंदर, दुनिया के अंदर हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट कहीं ना कहीं भगवान की आरती हो रही है, क्योंकि टाइम स्लॉट डिफरेंसेस है। कहीं ना कहीं भगवान का कीर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं शोभा यात्रा है, कहीं ना कहीं केवल यात्रा है, बट इट इज गोइंग ऑन। तो ये आशातीत पुरस्कार है, दिस इज व्हाट प्रभुपाद डिजायर्ड, और भगवान ने उनको वो पुरस्कार दिया है। तो यहाँ जो है, जब बलि महाराज के पास तीसरे पग की बात आएगी, उसके बाद उनको भी पुरस्कार मिलेगा, वो आप आगे पढ़ेंगे कि पुरस्कार क्या मिलता है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदी।